आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल सरकार की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इक्तदार में आने के 45 दिन के अंदर भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाकर बीएसएफ और एसएसबी को 1129 एकड़ जमीन हवाले की। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजाम और सिक्योरिटी में बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने के अज़म का इरादा किया है। ब्रिक्स के सियाहत के वज़रा ने पायदार सियाहत, मसनूई जहानत को हम आहंग करने और बिला रुकावट सफर पर तवज्जो देते हुए जयपुर एलामिया मंजूर किया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारत की जोड़ी चीन की जोड़ी से मुकाबला करेगी। और हॉकी आलमी कप में आज शाम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन के मकाम पर भारत की मर्दों की टीम अपने दूसरे मरहले के मैच में मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात मजबूरी नहीं है बल्कि हुकूमत के लिए एक अज़्म और यकीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उसकी पॉलिसियां अवाम के मुआफिक और तरक्की पसंदाना हैं। कल शाम नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने सरकारी एतबार से इस्लाहात पर खसूसी तवज्जो देते हुए इस्लाहात के सिलसिले में एक वाज़ह खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर नए दौर की इस्लाहात कर रहा है।
हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोडमैप बनाया। इस रोडमैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े किया कि उनकी हुकूमत महज ज़ाब्ते तब्दील नहीं कर रही है बल्कि वो ज़ाब्तों की पूरी पॉलिसी ही तब्दील कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि साबिका हुकूमतों के दौर में लाइसेंस राज ने बेरोजगारी में इजाफा किया था जबकि उनकी हुकूमत के पैदावार से जुड़े तरगीबी मॉडल नए मौके पैदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इक्तसादी माहौलियात के बारे में भी बात की और कहा कि वसाइल को आलायकार बनाना और बढ़ती हुई बदगुमानियां नए चैलेंजेस पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में भी भारत को पूरी दुनिया में तरक्की के एक दरख्शां मकाम के तौर पर देखा जा रहा है।
दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
जनाब मोदी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने पेशगोई की है कि भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई बड़ी मईशत रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे इकदाम कर रहा है जो उसकी तरक्की को नई जहत दे रहे हैं। मुल्क की सतह पर इस्तेहकाम के गहरे आलमी असरात को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर जबरदस्त एतमाद का इजहार किया कि मुल्क की तरक्की के सफर को महफूज बनाकर बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए फितरी तौर पर ज्यादा इस्तेहकाम लाया जा सकेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी की इस बात के लिए तारीफ की है कि नई सरकार ने इक्तदार में आने के 45 दिन के अंदर रियासत में भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के बाद 1129 एकड़ जमीन बीएसएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के हवाले की है। उन्होंने कहा कि सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन की दरख्वास्त 2014 से जेर इल्तवा थी। जनाब शाह कल मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में रानी दंगा इलाके में सशस्त्र सीमा बल फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर दाखिला ने कहा कि खारदार तार लगाने के काम को मुकम्मल करना जरूरी है ताकि दरअंदाजी को रोका जा सके और कौमी सलामती का तहफ्फुज किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गैरकानूनी इमिग्रेशन के तई कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी जारी रहेगी।
सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
ब्रिक्स के सियाहत के वुजरा की मीटिंग जो भारत की सदारत में मुनाकिद हुई थी कल खत्म हो गई। इसमें जयपुर ऐलामिये को मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी गई जिसमें ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के दरमियान सियाहत के शोबे में तावुन को मुस्तहकम करने के लिए एक फ्रेमवर्क की गुंजाइश फराहम की गई है। ऐलामिये में सियाहत में मसनूई जहानत के इस्तेमाल, पायदार सियाहत के तौर तरीकों, हुनरमंदी की तरक्की और बिला रूकावट सफर की सहूलत फराहम की गई है। मीटिंग की सदारत राजस्थान के जयपुर में सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने की और 2026 में भारत की सदारत में ब्रिक्स टूरिज्म ट्रैक इख्तिताम पजीर हुआ। टूरिज्म ट्रैक का मौजू साबित कदमी, इख्तिरा और पायदारी था और इस मौजू को आगे ले जाया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि सियाहत 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत के सफर में एक अहम रोल अदा करेगी और भारत के पास इतनी सलाहियत है कि वो माशी तरक्की को बड़े शहरी मराकज से कस्बों, गांवों और दूरदराज के खित्तों तक लेकर जा सके। ब्रिक्स के सियाहत के वुजरा के ऐलामिये 2026 को जयपुर ऐलामिये के तौर पर भी माना जाता है जो भारत की सदारत के तहत ब्रिक्स सियाहत वर्किंग ग्रुप के जरिए किए गए काम की अक्कासी करता है और चार अहम तरजीहात पर तवज्जो देता है जिनमें मसनूई जहानत और सियाहत, पायदारी और जिम्मेदाराना सियाहत, सियाहत हुनरमंदी, सलाहियत साजी और सियाहत के तबादले और बिला रूकावट सफर की सहूलियात शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के वुजरा की मीटिंग और ब्रिक्स के खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स के नौजवानों के उमूर के वुजरा की मीटिंग आज होगी जबकि खेलों के वुजरा की मीटिंग कल होगी। इन मीटिंगों की सदारत नौजवानों के उमूर के वुजरा और खेलों के वुजरा डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। खेलों के वजीर डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। नौजवानों की उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा खट्टे भी इन मीटिंगों में शिरकत करेंगी। नौजवानों की उम्र खेलों की वजारत के मुताबिक नौजवानों की उम्र के वुजरा की मीटिंग में तालीम, हुनरमंदी का फरोग, सनतकारी, फलाओ बहबूद और पायदार तरक्की के साथ नौजवानों की तरक्की और तफवीज इख्तियारात में तावुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू अगले माह की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली असातजा को नेशनल टीचर्स अवार्ड्स अता करेंगी। वजारत तालीम के मुताबिक अवार्ड्स के लिए स्कूल के टीचर्स को स्कूली तालीम और खानगी के महकमे के जरिए जिला, रियासत और कौमी सतह पर 3 मरहलों पर मुश्तमिल इंतखाबी अमल के जरिए मुंतखब किया गया है। ये 48 स्कूली टीचर्स 27 रियासतों, 7 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और मरकजी हुकूमत की 6 तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें 26 मर्द और 22 खवातीन टीचर्स शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और नेपाल ने सरहदी इंतजाम और सलामती के ताल्लुक से बाहमी तावुन को मुस्तहकम करने के अपने 2 तरफा तावुन और अजम का इयादा करने से मुतालिक सभी पहलुओं का जायजा लिया। कल देहरादून में भारत नेपाल मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 14वीं मीटिंग के दौरान मस्कूरा मामलात पर बातचीत की गई। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी बीएमआई पौसमी बासु ने 2 रोजा मीटिंग में भारतीय वफद की क्यादत की जबकि नेपाली वफद की क्यादत वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनंदा कैफले ने की। पेश एक रिपोर्ट।
मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि 2 रोजा मीटिंग के दौरान सरहद पार जराइम और मुजरिमाना सरगर्मियों, सरहदी बुनियादी ढांचे, खासतौर से मजबूत चेक पोस्ट, सड़कों और रेलवे नेटवर्क को मुस्तहकम करने और उनके मौसर इस्तेमाल के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने नाजायज कब्जे के खात्मे और सरहदी सुतूनों की देख रेख से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत की। वफूद ने मुख्तलिफ शोबों में इदारा जाती राबता कारी को मजबूत बनाने और सलाहियत साजी में इजाफा करने से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया और इन शोबों में मुसलसल ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। दोनों मुल्कों ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का अगला इजलास बाहमी तौर पर किसी मुनासिब तारीख पर नेपाल में मुनक़िद किया जाएगा। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
بھارت اور برطانیہ نے مشترکہ فوجی مشقیں کرنے، تربیت اور صلاحیت سازی کے ذریعے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان باہمی تعلقات اور تبادلوں کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے، جبکہ دونوں ممالک نے دلی میں کلیدی مذاکرات کیے۔ قومی راجدھانی میں دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے برطانیہ کے دفاع کے مستقل انڈر سیکرٹری کے ساتھ بھارت برطانیہ کے دفاعی مشاورتی گروپ ڈی سی جی کی 25ویں میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ حکومت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ فریم ورک کے تحت اس ماہ کی 20 تاریخ تک مجموعی طور پر 29 غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی اطلاع ملی ہے۔ ان میں 4,800 کروڑ روپے کی مجوزہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری شامل ہے۔ یہ سرمایہ کاری اطلاعاتی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اطلاعات و مواصلات، مینوفیکچرنگ، دوا سازی، ڈیٹا مراکز اور ٹرانسپورٹ خدمات سمیت وسیع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ کیرالہ میں 72ویں نہرو ٹرافی بوٹ ریس الپوزا کی پنامدہ جھیل میں منعقد کی جائے گی۔ اس باوقار سالانہ کشتی دوڑ میں سانپ کی بناوٹ جیسی روایتی کشتیوں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوگا۔ اور بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں بھارتی خواتین ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی خواتین کے ڈبلز کے سیمی فائنلز میں آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں چین کی جوڑی لیو شینگشو اور ٹین نینگ سے مقابلہ کرے گی۔ بھارتی جوڑی کل چین کے چوتھے مقام کی جوڑی کو 16-21، 21-15 اور 21-13 سے ہرا کر سیمی فائنلز میں داخل ہو گئی۔ ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم آج شام نیدرلینڈ کے ایمسٹلوین میں میزبان نیدرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرے مرحلے کا میچ کھیلے گی۔ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف 5-3 سے جیت حاصل کرنے کے بعد پول ڈی میں دوسرا مقام حاصل کر لیا ہے۔ یہ بھارت کے لیے کافی اہم کامیابی تھی کیونکہ بھارت نے جارحانہ اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسری جانب بھارت کی خواتین ہاکی ٹیم کو اب ٹورنامنٹ میں قائم رہنے کے لیے صرف ایک میچ جیتنا ہے اور کل بھارت کی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ بھارت کے نیزہ پھینکنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا نے لوسن ڈائمنڈ لیگ میں 88.05 میٹر نیزہ پھینک کر دوسرا مقام حاصل کیا ہے۔ یہ ان کی سیزن کی سب سے بہترین کارکردگی تھی، جبکہ سری لنکا کے رومیش تھرنگا نے 88.14 میٹر کی دوری تک نیزہ پھینکا اور پہلا مقام حاصل کیا۔ رومیش تھرنگا نے اپنی تیسری کوشش میں یہ سبقت حاصل کی۔ نیرج چوپڑا تھرنگا سے محض 9 سینٹی میٹر پیچھے رہے۔ کوئی بھی ایتھلیٹ باقی راؤنڈز میں اپنے نشانے کو بہتر نہیں کر سکا۔ حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اندازے سے کم پیداوار کے باوجود گھریلو مانگ سے نمٹنے کے لیے ملک میں چینی کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے۔ چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کے تناظر میں حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ چینی کی خاطر خواہ دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور صارفین کے لیے مستحکم قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکے۔ صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے بتایا ہے کہ وہ صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے۔ حالیہ کچھ ہفتوں میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو اس کی قیمت 48 روپے فی کلو گرام تھی، جو جمعرات کے روز بڑھ کر تقریباً 55 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کی وجہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے چینی کی منتقلی کو قرار دینا درست نہیں ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ مجیب اختر۔
شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کی 20 خلائی اسٹارٹپس کے سربراہوں سے ملاقات کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے بھارت کو عالمی خلائی ٹیکنالوجی کا اہم مرکز بنانے کے لیے جدت ترازی و باہمی تعاون پر زور دیا۔ جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئیزومی نے وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے تئیں جاپان کی حکومت کے مسلسل عزم کی تصدیق کی۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے بھارتی وزارت خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ بھارت اور سنگاپور کے درمیان چوتھی وزارتی گول میز میٹنگ سنگاپور میں ہوئی، جس میں فریقین کے وزراء نے اعلیٰ درجے کی مینوفیکچرنگ، کنیکٹیویٹی، صحت و طب، ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری جیسے شعبوں میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اصلاحات مجبوری نہیں ہے بلکہ حکومت کے لیے ایک عزم اور یقین ہے۔ انہوں نے زور دیکھتے ہوئے کہا کہ حکومت کی پالیسیاں عوام کے موافق اور ترقی پسندانہ ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال سرکار کی اس بات کے لیے تعریف کی ہے کہ نئی سرکار نے اقتدار میں آنے کے 45 دن کے اندر بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگا کر بی ایس ایف اور ایس ایس بی کو 1,129 ایکڑ زمین حوالے کی۔ بھارت اور نیپال نے سرحدی انتظامات اور سیکیورٹی میں باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور برکس کے سیاحت کے وزراء نے پائیدار سیاحت کو ہم آہنگ کرنے اور بلا رکاوٹ سفر پر توجہ دیتے ہوئے جے پور اعلامیہ منظور کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔